नमस्ते। सावित्री मंत्र मणि, इसमें हम लोग एक पैसेज पढ़ेंगे जो बुक वन कैंटो थ्री योगा ऑफ द सोल्स रिलीज उसमें से है ये पैसेज। सो योगा ऑफ द सोल्स रिलीज जो हमारी जीवात्मा है, चैत्य सत्ता है, वो किसके बंधन में है जिससे उसको मुक्त होना है। तो सभी आध्यात्मिक जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, लिटरेचर हैं, पुस्तकें हैं, आध्यात्मिक पुस्तक से मेरा मतलब है जो अनुभव से जन्मी हैं, साक्षात्कार से जन्मी हैं, उन सब में हम इसका वर्णन पढ़ते हैं। और जब कोई व्यक्ति अज्ञान से मुक्त हो जाता है तो उसकी क्या पहचान होती है। अब कहने को तो कोई भी कुछ भी कह सकता है आजकल कि मैं अज्ञान से मुक्त हो गया हूँ। सेल्फ रियलाइजेशन, आजकल इस पर बहुत सेल्फ रियलाइजेशन पर डिग्रीज भी हैं और नाना प्रकार के ग्रुप्स भी हैं, लेकिन वास्तव में वो उस व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, उसके अंदर की अवस्था क्या होती है। तो हम देखते हैं कि श्री कृष्ण से गीता में अर्जुन ये प्रश्न करते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ है क्या बोलता है, कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, खान पीन व्यवहार कैसा है उसका। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कोई भी बाहरी लक्षण नहीं देते हैं, आंतरिक लक्षण देते हैं। और वो आंतरिक लक्षण किस प्रकार के होते हैं उसका हम लोग वर्णन पढ़ेंगे। पर एक बैकग्राउंड के तौर पर हम संसार को जैसे देखते हैं, स्वयं को जैसे देखते हैं और भगवान को जैसे देखते हैं, ये दृष्टि बदल जाती है। तो हम इस तरह से अगर लें, हमारी दृष्टि की एसेंट यानी दृष्टि का भी जो उद्धार होता है, दृष्टि पहली दृष्टि होती है हमारी जो एकदम अचित ज्ञान की दृष्टि, जो जड़ तत्व से बंधा हुआ जीव है वो हर चीज में केवल अंधकार, जड़ता, तमस इसी को देखता है। और यदि वो ईश्वर की परिकल्पना भी कर ले तो उसी प्रकार का एक ऐसा महाशून्य जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक जड़ तत्व, नेचर को ही, मेटीरियल नेचर को ही वो भगवान समझता है क्योंकि उसकी दृष्टि सीमित है। फिर जब जड़ता के पास से हमारी दृष्टि मुक्त होती है, प्राण तत्व में आ जाती है, तब हम संसार को एक कामनाओं के खेल के रूप में देखते हैं और ईश्वर भी वैसे ही हो जाता है। ईश्वर कौन है जो हमारी कामनाओं की पूर्ति करता है, और जो कामनाओं की पूर्ति ना करे वो हमारा शत्रु है, ईश्वर कैसे हो सकता है। फिर और अंदर में उससे भी हम मुक्त होते हैं तो एक तीसरी दृष्टि जागती है, वो है मन की दृष्टि। अब मन की दृष्टि बड़ी इंटरेस्टिंग है, भगवान ने, प्रकृति ने आंखें भी बनाई ना, दो आंखें बनाई हैं, इन दोनों को सिंथेसाइज करना होता है विजन को। और जो बाईं आंख से हम देखते हैं वो राइट ब्रेन में जाता है, राइट आंख से देखते हैं वो लेफ्ट ब्रेन में जाता है, और हम एक साथ चारों तरफ नहीं देख सकते हैं। तो मन की दृष्टि क्या करती है, वो हर चीज को दो भागों में बांटती है, अच्छा बुरा, प्रकाश अंधकार, सौरो एंड हैप्पीनेस, सुख दुख, हानि लाभ, इस तरह की उसकी दृष्टि होती है। तो उसकी ईश्वर की परिकल्पना भी ऐसी होती है, और वो जब जीवन को समझने की चेष्टा करता है, ईश्वर के कर्म को, प्रयोजन को, तो वो ऐसे ही देखता है कि ईश्वर कौन है जो हमको सुख दे रहा है। अभी भी हम सुनते हैं जब जीवन में कुछ वो चीज़ें होती हैं जिनको हम प्लेजेंट, जो हमें सुख देती हैं, हम कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा है। और जब दुख का अनुभव होता है तो हम कहते हैं या तो भगवान रूठ गया है, या आप भगवान को तो ब्लेम नहीं कर सकते ओपनली, कहते हैं हमारी कर्म थे। अब जिसने कर्म का ऐसा विधान बनाया हो जहां दुख मिलने वाला हो एक जज के रूप में, ये तो हमारी एक कल्पना है भगवान की। तो भगवान ने प्रकाश और अंधकार बना दिए, लेकिन प्रकाश और अंधकार के बीच में जो लिंक है, सुख और दुख के बीच में जो चीज उनको जोड़ती है, वो कौन सी प्रज्ञा है जो जोड़ती है, जो स्वर्ग और नरक को, अच्छे और बुरे की जो हमारी, हम जैसे समझते हैं, उसमें एक कनेक्टिंग लिंक है जो हम खो चुके हैं। तो इसीलिए मन की दृष्टि सदैव डुअलिटी की दृष्टि है, वो चीजों को इस तरह से लेफ्ट कॉलम राइट कॉलम। अभी भी आप देखेंगे कि लोग किस तरह से, लेफ्टिस्ट हो कि राइटिस्ट हो, सेंट्रिस्ट मत बोल दीजिएगा, वो भी उसका भी उन्होंने डिफाइन कर दिया है। तो कोई पूछे अगर कि भाई तुम लेफ्ट में हो कि राइट में हो, मैं कहूँगा मैं डेप्थ में हूँ, ना लेफ्ट में हूँ ना राइट में हूँ, इंटरनलिस्ट हूँ। तो अब वो कैसी अवस्था होती है उसकी जो सेल्फ रियलाइज्ड है, ये चौथी दृष्टि है। और वो दृष्टि जिसको कहते हैं थर्ड आई, जो बिल्कुल भूमध्य, वो एक ही आँख है, लेकिन वो एक आँख आपको सब दिखाती है और चीज़ों के डेप्थ में जाके ईश्वर का कर्म दिखाती है। और जिसकी प्रज्ञा खुल गई है, प्रज्ञा चक्षु खुल गए हैं, वो संसार को कैसे देखते हैं, अब यहां पर उसका वर्णन है। He neared the still consciousness sustaining all। और देखिए बड़ी सुंदर हमारे यहाँ तो कहानी है शिवजी, अब कहानी को तो सब बहुत एंजॉय करके सुनते हैं, उन्होंने काम को नष्ट किया, पर वास्तव में वो दृष्टि पाने के लिए ये डिजायर सेल्फ को खत्म करना होता है, तभी ये अंदर की सेल्फ की जो रियल विजन है वो निकलती है। जब तक कामनाएं हैं तब तक हमारी व्यू पॉइंट्स इस पर बेस्ड रहेंगे, मन उसी तरह से स्वे करेगा, ओपिनियंस होंगी। इसीलिए लोग कई बार संसार में भगवान का काम नहीं समझ पाते हैं। किसी ने शेरविन से लिखा, कहा कि दिव्य जीवन का, जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होता है, 1947 का पत्र है, तो बड़े प्रसन्न होकर साधक लिखता है युद्ध समाप्त हो गया, तो अब आपकी दिव्य जीवन की जो स्वप्न है वो सिद्ध होगा। तो श्री अरविंद लिखते हैं कि दिव्य जीवन का स्वप्न युद्ध के समाप्त होने पर निर्भर नहीं करता है, कई बार वो युद्ध के द्वार से गुजर करके आता है। हम समझते हैं युद्ध समाप्त हो गया, शांति हो गई, अब नया जीवन आ गया, युद्ध के द्वार से, लेबर पेन्स, कुरुक्षेत्र। तो यहां वर्णन है, ही नियर्ड द स्टिल कॉन्शियसनेस सस्टेनिंग ऑल। वो एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम शुद्ध चेतना से साक्षात्कार करते हैं या तादात्म करते हैं। साक्षात्कार इज नॉट द राइट वर्ड, साक्षात्कार में भी एक दूरी है, क्योंकि साक्षात्कार आप कोई चीज देख रहे हो, और तादात्म्य में एक एकत्व है, हर चीज के अंदर एक ही चेतना काम कर रही है, अलग अलग रूप में, अलग अलग नाम में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग उपाय से, लेकिन वो कर्म एक ही कर रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर हम इस तरह से देखें जीवन को, वहां पे अशुपति पहुंच जाते हैं। He neared the still consciousness sustaining all, the voice that only by speech can move the mind became a silent knowledge in the soul। आत्म तत्व का ज्ञान वो ना तो किताबी ज्ञान होता है, ना पांडित्य का ज्ञान होता है, ना वो कोई एकेडमिक स्कॉलरली ज्ञान होता है, पता नहीं उसकी क्या हिंदी है, पांडित्य शायद होगा, जो भी है, लेकिन वो ज्ञान उसकी आत्मा से स्वतः स्फूर्त प्रकट होता है, क्योंकि आत्मा के अंदर सब चीज का ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वो दिव्य का बीज है, सारा ज्ञान उसके अंदर समाया हुआ है। यदि गागर में सागर का सही परिचय पाना है तो हमारी चैतसत्ता में है। ये एक ऐसी गागर है जिसमें भगवान ने समुद्र अपना भरा हुआ है और जिसमें से सारा ज्ञान प्रकट हो सकता है। पर कैसे? साइलेंट नॉलेज। वो ये शब्द ले सकती है, कोई और शब्द ले सकती है, वो हमेशा फ्रेश रहता है। इस ज्ञान की सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि वो सदैव फ्रेश रहता है, ताजा मक्खन मिलता है उसमें हमेशा, वो बासी नहीं होता, पुराना नहीं होता। एक ही चीज को अलग अलग ढंग से वो प्रकट होती है, अनेकों ढंग से प्रकट होती है। आगे क्या होता है, ये तो ज्ञान की बात हुई। द स्ट्रेंथ दैट ओनली इन एक्शन फील्स इट्स ट्रूथ was lost now in a mute omnipotent peace। हर चीज जो भाग दौड़ कर रही है, एक जगह श्री अरविंद का एफोरिज्म है, डू नॉट मिस्टेक रैशनेस फॉर करेज। कि रैशली कोई हम कर्म कर रहे हैं, झंडा लेके चले गए, धरना दे दिया, तो ये कोई स्ट्रेंथ का लक्षण नहीं होता है, कई बार ये वीकनेस का लक्षण होता है। जो सच्ची सच्चा बल होता है, सच्चा सामर्थ होता है, वो तो वैसा होता है जैसा श्री कृष्ण रथ पे बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कोई पूछे आप कुछ कर रहे? नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो चॉइस दी थी, अर्जुन ने कहा कि आप रथ सारथी बन जाइए, मैं हूं शस्त्र मैं उठाऊंगा नहीं। लेकिन देखिए कितनी अद्भुत बात है, ये जो चॉइस थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी सेना एक तरफ रहेगी, मैं शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान को शस्त्र अस्त्र उठाने की जरूरत नहीं होती महाविनाश करने के लिए। ये बात अर्जुन को ठीक समझती कि जहां कृष्ण है शस्त्र उठाने, शस्त्र तो हम उठा लेंगे, आपकी उपस्थिति काफी है। ओमनी पोटेंट पीस, ऐसी शांति जिसमें इतना सामर्थ्य है। श्री अरविंद की जब हम जीवन को देखते हैं, माता जी बताती एलिमेंट्स पर, ये जो कहानी है श्री अरविंद की, रियल घटना है, ये बड़ी अद्भुत है। ये हम कैजुअली पास के, अरे श्री अरविंद बहुत साइक्लोन आते थे यहाँ, बवंडर हम सबको पता है, उसमें लोग उड़ जाते थे, तृणाव्रत वो तो आएगा, कृष्ण जी का खेल शुरू हो गया तो तृणाव्रत आता था, उड़ा ले जाता था लोग, मनुष्य उड़ जाते थे नलिनीदा के उस समय की। और वो बताते कि उस समय का पांडिचेरी शमशान से कम नहीं था, 6 बजे के बाद कोई बाहर नहीं जाता था। और बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं कि आखिर शिव की तपस्या शमशान से ही तो प्रारंभ होती है। सारे यहाँ पे वो चोर चक्के डाकू मर्डरर्स ये सारे लोग थे, माने सब नहीं लेकिन बाहर 6 बजे के बाद उनका निशाचर योनि का राज्य रहता था। और एक दिन बहुत भयंकर साइक्लोन आता है, बवंडर आता है, और उस दिन माता जी जाती हैं श्री अरविंद के कक्ष में कि मैं खिड़कियाँ बंद कर दूँ। वो देखती हैं खिड़कियाँ खुली हैं, श्री अरविंद बिल्कुल अविचलित वो बैठ करके कुर्सी पर अपनी टेबल पर कुछ लिख रहे हैं पुस्तिका में, और एक बूंद पानी अंदर नहीं आ रहा है। अब ये घटना केवल एक साधारण चमत्कार नहीं है, इसको अगर हम ध्यान से समझें तो सबसे कठिन होता है जड़ तत्व की शक्तियों पर अधिकार। जड़ तत्व की शक्तियां यानी जो मेटीरियल वर्ल्ड की फोर्सेस हैं उनको रोक पाना। आप साइकोलॉजिकल फोर्सेस पे वर्क कर सकते हो, क्रोध आ रहा है आपने देख लिया आपने उसको रोक दिया, डिजायर आ रही है प्राण जगत की आपने उसको रोक दिया, सामने से तूफान आ रहा है सुनामी आ रही है आप कैसे रोकोगे उसको, तो उस पर अधिकार। ओमनी पोटेंट पीस लेकिन परम शांति के साथ विद्यमान, तो वो ऐसी शांति होती है जो शव की शांति नहीं है, शिव की शांति है। वो शांति होती है लेकिन वो शांति ओमनी पोटेंट होती है, सर्वशक्तिमान होती है। माता जी बताती हैं कैसे कोई श्री अरविंद के पास जाके, अरे मुझे यहाँ दर्द है दर्द है, श्री अरविंद देखते हैं कि वहाँ एक काला सा स्पॉट है जो नाच रहा है, एक सूक्ष्म उंगली हाथ से वो उसको निकाल के फेंक देते हैं। अचानक वो कहते हैं अरे मैं ठीक हो गया ठीक हो गया। बिल्ली जब मर जाती है क्योंकि बिच्छू ने काट लिया है, बट वेरी सून विद इन फ्यू मिनट्स माँ उसको ला के श्री अरविंद के सामने रख देती है, कहती है लॉर्ड। अब वो समझ गए श्री अरविंद की शी मस्ट बी सेव्ड। तो माँ बताती हैं कि श्री अरविंद केवल उसकी ओर देखते रहे 20 मिनट तक, उन्होंने बिल्ली को देखा, उसके बाद उसने अंगड़ाई ली, उठी कूदी और चल पड़ी। बड़ी बड़ी अद्भुत लीला है माँ श्री अरविंद की। माँ भी कर सकती थी लेकिन ये देखिए माँ नहीं करेंगी, जब श्री अरविंद हैं तो शी विल नॉट, वो लाके रख देती हैं लॉर्ड। हर चीज में हम देखते हैं कि माँ इस तरह से लॉर्ड, और उन शब्द का कई सारे ऐसे उदाहरण हैं पांडिचेरी में मृत्यु के बारे में जो श्री अरविंद माता जी ने बताया है। ए लेजर इन द लेबर ऑफ द वर्ल्ड्स, ए पॉज इन द जॉय एंड एंग्विश ऑफ द सर्च, रिस्टोर्ड द स्ट्रेस ऑफ नेचर टू गॉड्स काम। एंग्विश ऑफ द वर्ल्ड्स एक बहुत पुरानी फिल्म थी जिसमें ये अजीब सी लाइन थी, इतना सन्नाटा क्यों है, ये सन्नाटा अच्छी चीज नहीं है, वो सन्नाटा शमशान का सन्नाटा है। लेकिन एक दूसरा प्रश्न हम लोग कर सकते हैं, इतना कोलाहल क्यों है, किस चीज के पीछे लोग भाग रहे हैं, ढूंढ तो रहे हैं कुछ। रोक रोक के पूछिए क्या ढूंढ रहे हो भैया, कहाँ ढूंढ रहे हो, खुशियों के बाजार में जा रहे हैं, बाजार में मेला लगा है, वहां ये खुशी वो खुशी, ये सुख वो सुख, सबके नाम काम दाम, साथ में लिखी है एक्सपायरी डेट परमानेंट कुछ नहीं है। एक्सपायरी डेट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सपायरी डेट होती है तभी आप जाके वापस एक और खरीदोगे, बाजार चलता है एक्सपायरी डेट से। लेकिन एक खुशी ऐसी है जो कभी एक्सपायर नहीं होती है, वो केवल हमको इंस्पायर करती है, एक ऐसा सुख है। माँ बताती है देयर इज अ हैप्पीनेस दैट वन फाइंड्स नोवेयर, वो एक सेटिस्फैक्शन क्या है, तो लेबर इन द लेजर इन द लेबर ऑफ द वर्ल्ड्स, पूरी सृष्टि जिसके लिए श्रम कर रही है वह आश्रम में आकर के शांत हो जाता है। लेबर ऑफ द वर्ल्ड्स, ए पॉज इन द जॉय एंड एंग्विश ऑफ द सर्च, यहां पर जॉय भी है, कुछ मिला फिर वो छूट गया, एंग्विश छटपटाहट, रिस्टोर द स्ट्रेस ऑफ नेचर टू गॉड्स काम। तो लोग पूछते हैं साइकेट्रिस्ट के रूप में, ये समस्या है वो समस्या है, तो बहुत स्ट्रेस है, तो समाधान, तो तत्कालिक समाधान तो बहुत सारे हैं, परमानेंट समाधान केवल एक है। तत्कालिक समाधान तो दवाओं से लेकर के मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, श्वास को संयत करिए, ये करिए और अच्छा लगता है लोगों को, कुछ समय बाद फिर सुर, आप कितने देर तक श्वास को संयत करते रहोगे पूरे दिन। और जीवन केवल श्वास पर नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो परमानेंट सॉल्यूशन तो रिस्टोरिंग द स्ट्रेस ऑफ नेचर टू गॉड्स काम, प्रकृति अपने आप शांत हो जाती, क्यों, जिसको ढूंढ रही थी मिल गए। बड़ी सुंदर लाइन है शेरविन की पोयम कृष्ण में, ऑल नेचर इज ए वाइड इनेमट पॉज होपिंग हर लॉर्ड टू टच टू क्लैस्प टू बी फॉर दिस वन मोमेंट लिव द एज इज पास्ट द वर्ल्ड नाउ थ्रॉब्स फुलफिल्ड इन मी एट लास्ट। ढूंढ जैसे ऐसा कुछ है कि जैसे मान लीजिए कोई ढूंढ रहा है, किस चीज को ढूंढ रहा है, कहाँ ढूंढ रहा है, क्यों ढूंढ रहा है, कुछ ढूंढ रहा है, अचानक उसके सामने वह मिल जाए जिसमें उसको अपनी पूरी सर्च की परिसमाप्ति, अरे यही तो है, उसको पता नहीं है कि वो क्या ढूंढ रहा है, अचानक यही तो है जिन्हें मैं ढूंढ रहा था, पॉज रुक गया थम गया, होता है ना ऐसा कई बार, वो एक इटर्नल का आभास होता है, तो शेरविन के कक्ष में लोगों को होता है, अब बैठे हैं तो वो कैसे गुजर जाता है समय पता नहीं चलता है, अचानक आवाज आती है उठो उठो, तो आप इटर्नल से टाइम जोन में आते हो। ये कभी कभी होता है, ये एक आभास जो ईश्वरीय चेतना के स्पर्श से मिलता है। ए वास्ट यूनैनिमिटी एंडेड लाइफ डिबेट, लाइफ का क्या डिबेट है, इससे सुख मिलेगा या उससे सुख मिलेगा, ये अच्छा है या वो अच्छा है। और जैसा किसी ने कहा, महान कवि थे, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला यह सोच सकूं, जो किया कहा सोचा जाना, वो बुरा किया या भला किया, इसी आपाधापी में जीवन चला जाता है, इसी डिबेट में, एक मन के अंदर डिबेट, डिबेट से भला किसको कोई कंक्लूसिव चीज मिली है, इसके लिए तो आदमी टेलीविजन देख ले जान जाएगा, लेकिन वो डिबेट, डिबेट का मतलब है यहां विरोधात्मक दिखने वाली चीजें, लेकिन उन दोनों के पीछे एक सत्य छिपा होता है। कैपिटलिज्म का अपना सत्य है, कम्युनिज्म का अपना सत्य है, डेमोक्रेसी का अपना सत्य है और किंगशिप का अपना सत्य है। तो इनके जब हर चीज के पीछे जो छिपा हुआ सत्य है वो प्रकट हो जाता है तो डिबेट एंड हो जाता है। तो यहां पर ए वास्ट यूनैनिमिटी एंडेड लाइफ्स डिबेट, द वार ऑफ थॉट्स दैट फादर्स द यूनिवर्स, इस सृष्टि की उत्पत्ति जितने भी देखा जाए तो इवन जो वार्स होते हैं वो केवल भौतिक स्तर पे नहीं लड़ जाते, उनका प्रारंभ कहीं और हुआ होता है, आइडिया के लेवल पर होता है, हमारी समझ अंडरस्टैंडिंग जीवन को हमने जैसे देखा है वहीं से शुरू होता है। अब ट्राइब्स क्यों लड़ती थी, उसकी समझ ये थी कि जो मेरा ट्राइब है वही बस अल्टीमेट है, कि जो मेरी ट्राइब है बस यही है, यही कुल, यही घराना, यही सर्वोत्तम है, बाकी किसी को जीने का अधिकार नहीं है, वहां से जो प्रारंभ होता है आज तक चल रहा है। तो ट्राइब्स तो वो एक सोच है। तो ये लेकिन इससे जन्म होता है किन चीजों का, शौर्य का, कॉन्ट्ररी थॉट का, एक अलग आइडिया का, और उससे ये ब्रह्मांड आगे बढ़ता है, सृष्टि आगे बढ़ती है। द क्लैश ऑफ फोर्सेस स्ट्रगलिंग टू प्रिवेल इन द ट्रेमेंडस शॉक दैट लाइट्स ए स्टार एज इन द बिल्डिंग ऑफ ए ग्रेन ऑफ डस्ट। तब उसको जब वो ब्रह्मांड को देखता है तो कहता है अद्भुत, धूल के कण को देखता है तो अद्भुत, पुष्प की सुगंध को देखता है तो अद्भुत, और उसके ही अंदर छिपे एक कीड़े को देखता है जो हल्का हल्का रेंग रहा है और उसकी नाल से नीचे जा रहा है, अद्भुत हर चीज के अंदर उसको। द हैंड दैट सेंट जुपिटर स्पिनिंग थ्रू हेवन स्पेंड्स ऑल इट्स कनिंग टू फैशन ए कल, हर चीज में उसको वह दर्शन होने लगता है। द ग्रूव्स दैट टर्न देयर डंब एलिप्स इन स्पेस प्लाउड बाय द सीकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स डिजायर। अब देखिए शेरविन कितने परफेक्शनिस्ट हैं। अब ये जितने प्लैनेट हैं ना, कई बार हम लोग जब उनका रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं गलत करते हैं, सर्किल में घूमते दिखाते हैं, एलिप्टिकल होते हैं उनके ऑर्बिट्स। उसका कारण है नेचर ने कोई भी चीज ऐसे नहीं बनाई है, वो लगता है पास आ रहे हैं फिर वो दूर जा रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि नेचर ने एक एक चीज कितना उसके पीछे वो गया है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन द चेंजिंग वेरिएशंस अद्भुत है। तो द ग्रूव्स दैट टर्न देयर डंब एलिप्स इन स्पेस, दिख नहीं रहे हैं लेकिन वो मार्ग जिसके द्वारा तारे नक्षत्र सारे घूम रहे हैं, प्लव्ड बाय द सीकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स डिजायर, सृष्टि में जो सृष्टि के पीछे सृष्टि होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, तो उससे इन सब का संबंध है। दे आर सेटिंग द ऑर्बिट्स। अब जब कोई पूछे कि जो बना रहे थे नेबुला, अब देखिए वर्ल्ड डिजायर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब इसमें अब ये डिजायर शब्द को अलग अलग ढंग से प्रयोग हुआ है, लेकिन अब देखिए संसार में जब सूर्य के अंदर से खूब सारे प्लैनेट्स निकले, एक नेबुला था, सूर्य नहीं था, एक अग्निपुंज था, शक्तिपुंज था, ऊर्जा पुंज था, और सब घूम रहे थे। कोई पूछता ये क्या काम कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं इसे, तो भगवान कहते कि नहीं, मैं इसके एक मट्टी में से एक ऐसी चीज बनाऊंगा जो मेरा ही प्रतिरूप होगी। तो देखने वाला क्या कहता, सर ये आप कल्पना नहीं करिए, रियलिटी में रहिए, अभी तो मट्टी नहीं है कहीं, ऊर्जा ही ऊर्जा है। तो क्या कहते, वेट एंड वॉच, और ये जो सारा घूमता है सही स्थान पर पृथ्वी आती है और सूर्य की परिक्रमा करती है चारों तरफ, और उस परिक्रमा के कारण उसके अंदर सीजन्स परिवर्तन होते हैं, सीजन्स परिवर्तन होते हैं तो नाना प्रकार की वैरायटी के उसके अंदर फ्लोरा और फौना उत्पन्न होते हैं। तो ये सब कुछ कितने दूर की दृष्टि से, द लॉन्ग रीगजिटेशंस ऑफ टाइम्स फ्लड, क्या पंक्ति है। टाइम का हम लोग समझते हैं कि फॉरवर्ड मूवमेंट, एक लीनियर मूवमेंट होता है, रीगर्जिटेशन, रीगर्जिटेशन ये मूवमेंट है, जब आप वॉमिट करते हो ना तो वॉमिट इज डॉक्टर लोग वही चीज है, रीगर्जिटेशन यानी जो चीज आपके पेट में जानी चाहिए थी बाहर आ गई। टाइम्स फ्लड्स वे चीजें जो काल के गर्त में चली गई थी अचानक निकल के बाहर आती हैं, दैट इज रीगर्जिटेशन। तो काल ने जिनको एब्जॉर्व कर लिया था, समाप्त कर लिया था, ऐसा लग रहा था कि वो नहीं है, वो फिर से बाहर आती हैं। कहां से आती हैं, क्यों आती हैं, द टॉर्मेंट एजिंग द डायर फोर्स ऑफ लस्ट, ये सेंटेंस अभी चल रहा है, वो लास्ट में आएगा पंच लाइन। अभी वो सब बता रहे हैं कि ये सारी चीजें जो हमको भ्रमित करती हैं, द टॉर्मेंट एजिंग द डायर फोर्स ऑफ लस्ट, डायर फोर्स ऑफ लस्ट जिसके कारण काम, काम केवल एक फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, काम लस्ट जो शब्द है ये बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, ये केवल एक फिजिकल अट्रैक्शन सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं है, ये किसी चीज को ऐसे पकड़ करके उसको अपना बनाने की जो चाह है, दैट इज लस्ट। तो वो जो लस्ट है जो टॉर्मेंट करता है, जिसके कारण कोई चीज आपको मिलके भी नहीं मिलती है, हर समय हाथ से फिसली हुई दिखती है, दैट वेक्स काइनेटिक इन अर्थ डलर्ड स्लाइम, लेकिन जो सोया हुआ है बिल्कुल रॉक समान है, उसको जगाने के लिए जरूरी है। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान ने ऐसी चीजें बनाई ही क्यों, जिनको बाद में कहते हैं छोड़ना है। तो भाई ये अपनी अपनी स्टेज है, पत्थर को जगाने के लिए भगवान ने ये चीजें बनाई। पत्थर के अंदर आप जो कीड़ा है उसको आप सीधा ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता है, तो उसको मूव करने के लिए भूख प्यास काम क्रीड़ा, उसका यही बस जीवन का इतना ही सा है, तो उस लेवल के लिए ये आवश्यक है। फिर जब वो अपना काम कर लेती है तो वास्तव में एक्चुअली अपने आप चली जाती है, इसको करना भी नहीं कुछ होता है, बट यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट लेवल एंड काव से पर्सनैलिटी आउट ऑफ मड, द सॉरो बाय विच नेचर्स हंगर इज फेड। दुख का रोल, भगवान ने दुख क्यों दिया संसार में? दुख नहीं होता तो प्यास नहीं होती, भूख नहीं होती, प्यास नहीं होती तो हम सीमित से ही बड़े सुखी हो जाते हैं, लेकिन भगवान तो असीम देना चाहता है, तो हर सुख के साथ उसने दुख की छाया जोड़ दी है, ये उसकी कृपा है, नहीं तो क्या होता, हम सीमित सुख से ही खुश हो जाते हैं। तो इसलिए वो साथ में द सॉरो बाय विच नेचर्स हंगर इज फेड, द ईस्ट्रस विच क्रिएट्स विथ फायर ऑफ पेन, प्रकृति के अंदर जो जन्म देते हैं जो जीव, और उनके अंदर जो चाह उत्पन्न होती है संपर्क की, संबंध की, और उस संबंध से जो ऊर्जा, जो पीड़ा प्रकट होती है, वो पीड़ा फिर लेबर पेन्स में भी प्रकट होती है, और उससे जो जन्म होता है, द फेट दैट पनिशेज वर्च्यू विद डिफीट। हम लोग प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, उज्जवल पंख दिए बगले को कोयल के ही विधिकारी, तो कर्मन की गति न्यारी, यही हम लोग बोलते हैं ना, मूरख मूरख राज करत हैं पंडित फिरत भिखारी, उद्धव जी का उस पद है, इसका एक कारण है और उसको हम नहीं समझ पाते हैं। अब ये देखिए तीसरी आंख खुलने से ये चीजें समझ आती हैं, वरना ये चीज चलती रहती है। अब हम लोग थ्योरी बनाते हैं, ये जो पंडित है भिखारी इसलिए क्योंकि इसने बड़ा कोई पुराने जन्म में, ये मोस्ट कन्वीनियंट अगर कोई थ्योरी बनी है तो यही है, उसने पूर्व जन्म में कोई बुरा काम किया था। अच्छा देखिए अजीब बात है, अगर बुरा काम किया था तो पंडित कैसे बना, और जो ये आज राज कर रहा है उसने अच्छा काम किया था, उसने बुरा काम किया उसने अच्छा काम किया था तो राजा है, राजा है तो मूर्ख कैसे बना, अच्छा काम किया था उसने तो, ये पैराडॉक्स कैसे है? तो कोई चीज मिसिंग है, और वो मिसिंग एलिमेंट वो ज्ञान तीसरी चक्षु के खुलने से सेल्फ रियलाइजेशन के साथ साथ ही प्रकट होता है। द ट्रेजेडी दैट डिस्ट्रॉयज लॉन्ग हैप्पीनेस, जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, एक कहां से स्पॉइल स्पोर्ट एक होता है ना, आपने देखा होगा जैसे ताश के पत्ते में तो जोकर होता है, अब वो जोकर आ जाए तो खेल बदल देता है वो, आप अच्छा खासा खेल जीत रहे थे, आपको पता नहीं था अगले बंदे के पास जोकर है, और वो जोकर आकर के पूरे पत्तों को चेंज कर देता है, आप उसको कहीं भी लगा सकते हो। तो ऐसे ही संसार में एक जोकर है, आप देखो ना सर्कस में भी जोकर यही करता है, अजीब सी लीलाएं करता है, आपको हंसी आएगी लगे ये तो फेल्योर है, अचानक कुछ ऐसा करेगा जो बाकी सब, जोकर फिट्स एवरीवेयर, तो ऐसा एक जोकर है जो सृष्टि में घूमता है, जो अचानक आप जीत रहे थे ताश शतरंज की बाजी बड़ा मजा आ रहा था, अचानक वो जाते जाते वो उठा के फेंक देगा, अब जो हार रहा था वो तो बड़ा खुश होता है, लेकिन जो जीत रहा है वो कहता है कि ये तो गड़बड़ हो गया। क्रिकेट मैच जो टीम पक्का जीतने वाली थी बारिश आ गई, डकवर्थ लुई सिस्टम आ गया, जो अब हारने वाली टीम थी वो उस एंगल से जीत गई। तो ये कौन है ये जोकर सृष्टि के अंदर, विच द ट्रेजेडी दैट डिस्ट्रॉयज लॉन्ग हैप्पीनेस, द वीपिंग ऑफ लव, द क्वारल ऑफ द गॉड्स। प्रेम को क्यों संघर्ष करना पड़ता है, जो संघर्ष ना करे वो प्रेम कैसा, इसका उत्तर तो ये हो सकता है जो हल्के, तभी तो टेस्ट ऑफ फायर, इसीलिए सीताराम का प्रेम अमर है, पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस, वो बार बार उस एंगल पे चले जाते हैं, राम जी ने ये परित्याग किया वो किया जस्टिफिकेशंस, पर अब देखिए इस कहानी की अद्भुत बात क्या है, कितनी बार माता सीता का बिछो होता है कितने प्रकार के कष्ट दोनों को झेलना पड़ता है। लेकिन अगर देखा जाए, इस सब के बावजूद सीताराम का प्रेम अमर है, अद्भुत प्रेम है वो, राधा और कृष्ण प्रेम अमर है उनका। तो ये क्यों है? ये प्रेम जो टेस्ट ऑफ प्रेम वास्तव में वही है जिसको अगर आप कितना भी सेपरेट कर दो, स्पेस में, टाइम में, कोई कंडीशन ले आओ, पर जो सच्चा प्रेम है वो टिका रहेगा। और दूसरे प्रकार का प्रेम है वो तो है, साथ है, पर क्या है, क्या कहते हैं, पास है पर साथ नहीं, वो एक अलग चीज है। तो द लव, द वीपिंग ऑफ लव, द क्वारल ऑफ द गॉड्स, गॉड्स भी झगड़ा करते हैं, कैपिटल जी से है, प्रेम का देवता और ज्ञान की देवी में अक्सर समस्या होती है, नॉट इन द हाइएस्ट ओवर माइंड लेयर्स, पर थोड़ा नीचे आके, और प्रेम की देवी और न्याय की देवी में भी समस्या होती है। ये सबसे सुंदर ढंग से क्वारल ऑफ द गॉड्स हमारे मिथोलॉजी में भी कुछ एक स्टोरी है, इंद्र इत्यादि की। एक बार इंद्र की अग्नि से लड़ाई होती है, अग्निदेव चले जाते, कहते मैं ही हूँ राजा, और सारी सृष्टि को भस्म करने लगते हैं। लेकिन ग्रीक मिथोलॉजी में बड़ा कॉमन है ये आना, देवताओं के झगड़े। हर एक देवता अपना आधिपत्य चाहता है कि मेरी शक्ति वो संसार पे राज्य करे, और दूसरा देवता है वो भी अपना आधिपत्य चाहता है। यही तो ओवर माइंड का क्रिएशन है, जिसके कारण श्री अरविंद ने उसको डिसॉल्व करने को कह दिया। ओवर माइंड में प्रत्येक देवता वो अपनी सृष्टि का राजा होता है, और वो अपनी सृष्टि को एक्सटेंड करता जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। ओवर माइंड इज टाइमलेस टाइम, मतलब वहां समय की सीमा नहीं है, इटर्निटी नहीं है, लेकिन उसमें समय की सीमा नहीं है और देश की सीमा नहीं है। लेकिन दूसरा देवता है उसकी भी उसी प्रकार से एम्पायर है, और फिर वही जब नीचे आते हैं तो झगड़ा करते हैं, लड़ाई हो जाती है। लड़ाई मतलब हम लोग की तरह नहीं लड़ते हैं, कई बार हमसे वर्स, क्योंकि हम लोग तो चैत्य सत्ता है ना हमारे अंदर, थोड़ी देर बाद हम लोग कहते हैं क्या झगड़ा करना छोड़ दो। लेकिन जो देवताओं का युद्ध होता है उसका जो प्रभाव है इस भूमि पर पड़ता है, भयानक प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं, क्यों, हमारी स्कूलिंग पूरी हो गई, और इन सब के पीछे छिपी हुई जो प्रज्ञा है वो स्पष्ट हो जाती है। सीज्ड इन ए ट्रूथ विच लिव्स इन इट्स ओन लाइट, एक ऐसा प्रकाश प्रकट हो गया जिसमें ये सारे जो द्वंद्व हैं वो समाप्त हो जाते हैं। एक जगह माता जी कहती हैं कि, श्री अरविंद कहते हैं बड़ी सुंदर ईशावास उपनिषद में, कहते हैं डिस्ट्रस्ट ऑल यूटोपियाज विच प्रॉमिस यू हैप्पीनेस बट डू नॉट टैकल रिमूव द रूट ऑफ स्ट्रगल एंड सफरिंग। डिस्ट्रस्ट ऑल यूटोपियाज, यूटोपिया मतलब कि एक अद्भुत राम राज्य हो जाएगा हम लोग यूटोपिया, लेकिन वो चीजों के रूट को नहीं हटा रहे हैं। अमेरिका ड्रीम डेस्टिनेशन हो गया, 100 साल में आपका खेल खत्म हो गया, मतलब क्योंकि वो यूटोपिया ऐसे बनते ही नहीं है किसी भी जगह को। अक्सर लोग पूछते हैं कि ऑरविल में अब ये झगड़ा हो रहा है, अरे इसीलिए हो रहा है क्योंकि सबको भगवान ये टर्न कर रहे हैं टेंशन की, ऐसे तुम नहीं बना सकते हो, इसको डेमोक्रेटिक वे से, मेंटल डिबेट से नहीं सॉल्व कर सकते हो। आपको कोई चीज कितनी भी अच्छी लग रही हो, आपका मेंटल व्यू पॉइंट ओपिनियन सब ठीक है, बट आप ये यूटोपिया नहीं बना सकते हो। भगवान बड़ा चतुर काम करते हैं, वो यूटोपिया का चार्टर दे देते हैं, पर बनाना आपको है क्योंकि अगर बना बनाए यूटोपिया में आदमी चला गया तो उसको नष्ट कर देगा और कुछ नहीं करेगा। ऐसे ही किया था शिव जी ने, सारे असुरों की माता दीति गई, बोली आपने बड़ा अन्याय किया है, हमारे बच्चों को तो आपने नेदर वर्ल्ड में रहते हैं और ये देखो देवताओं को स्वर्ग दिया है। तो शिव जी कहते हैं इतनी सी बात है, हाँ इतनी सी बात है, चलो सोमनाथ के मंदिर में, बड़ा इंटरेस्टिंग है इसीलिए सोमनाथ की जो आक्रमण हुआ था, तो सोमनाथ के मंदिर में दूध चढ़ा देना, सारे तेरे जो बच्चे हैं ना संतान दैत्य वो सब स्वर्ग चले जाएंगे। अब स्वर्ग में तो हड़कंप मच जाता है कि ये क्या हो गया, सारे देवता, लेकिन अब शिव जी ने कहा है वो अटल है, कहते मैंने तो कह दिया वो मेरे प्रिय हैं, अब चले सब, बड़े लाइन लग गई, ये तो फ्री वीजा मिल रहा है आज के दिन अब सारे लाइन लगा करके थोड़ा सा दूध लेके खड़े हुए, वो डाला चले गए, एंट्री फ्री। अब वहां सारे गणेश इत्यादि देवता की हो क्या रहा, हम करें लेकिन क्या, सामने महादेव खड़े। तो महादेव से जब कहते थे, जाने दो, तुमको क्या समस्या है, तुमको तो मिला हुआ है ना स्वर्ग, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, अब इसके सामने क्या आप कह सकते हो। चले जाते हैं, अब जाते हैं, वृत्ति तो बदली नहीं है दैत्यों की। वहां जाते हैं, देखते हैं कामधेनु, कहते किसकी है, तो कहते किसी की नहीं है। अच्छा, ऑरोविल बिलोंग्स टू नोबडी इन पर्टिकुलर, लेकिन ये भूमि पर इसका मतलब है जो इसको हथिया लेगा वो उसकी भूमि हो जाएगी, इट बिलोंग्स टू नोबडी। तो भूमि पर अपना जैसे घर बना लिया, अब हमारी हो गई क्योंकि किसी की नहीं है। तो वो कामधेनु को पकड़ के खींचने लगता है एक व्यक्ति, एक असुर। दूसरे कहते तुम्हारी कैसे, मेरी होगी, यहां तक कि वो इंद्र के सिंहासन पे भी अब प्रश्न खड़े हो जाते हैं, आपका तो टर्म एंड एंड होना चाहिए, अब हम डेमोक्रेटिक वोट से डिसाइड करेंगे। अब इतना कंफ्यूजन होता है, मारा मारी सब शुरू हो जाती है। तब लोग कहते हैं शिव जी को, शिव जी तो कह रहे हैं अभी चलने दो खेल। देन द डिवाइन मदर इंटरव्यूज, बड़ी अद्भुत कहानी है वो। तो गणेश जी खड़े हो जाते हैं द्वार पे, कहते हैं आप ये, मैं आई वोंट अलाउ, बिकॉज डिवाइन मदर कहती हैं गणेश जी को आज फिर तुम द्वार पे खड़े हो जाओ। तो शिव जी कहते हैं हटो, कहते नहीं हटूंगा, क्यों नहीं हटोगे डिवाइन मदर का। अब देखिए डिवाइन मदर और शिव जी के बीच ये युद्ध चल रहा है। तो शिव जी एकदम, ऐसी स्टोरी गोस कि क्रोध में आकर, क्रोध नहीं है वो, एक विनाशकारी कि मैं पूरी चीज ही समाप्त कर दूं, एक नई सृष्टि करेंगे। अब देवताओं के लिए इट इज नथिंग, स्वर्ग नरक सब डिसॉल्व कर देना, फिर से नया कुछ बनाएंगे नए आधार पे। तब डिवाइन मदर खड़ी हो जाती, कहती आज मैं गणपति को हानि नहीं पहुंचाने दूंगी। अब वो खड़ी होती है अपने पूरे स्प्लेंडर में, तब वो शिव जी शांत हो जाते हैं, कहते हैं अभी क्या करना है, देहा वो अधिकारी नहीं है। तो यूटोपिया बना देना एक बात है, उसमें रहने के लिए अधिकार होना चाहिए। अधिकार कैसे मिलता है, जब यूटोपिया का चार्टर आप फॉलो करते हो। फॉलो कब करोगे, जब उसको समझोगे। ऑरोविल बिलोंग्स टू नोबडी इन पर्टिकुलर का मतलब ये नहीं है सो देयरफॉर एनीबडी कैन गो एंड, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, इट बिलोंग, ये तो पुराने समय ट्राइब्स करते थे, जो जमीन मिले उसको अधिग्रहण कर लिया, दैट्स नॉट व्हाट इट मींस, इट बिलोंग्स टू द डिवाइन, और डिवाइन का प्लान वहां फुलफिल होना है। अब देखिए आप इस दृष्टि से, लेकिन मनुष्य नहीं जानता है, इसलिए वो यूटोपियास ईगो के कारण नष्ट होते हैं। और जब तक मनुष्यों में अहंकार रहेगा, जब तक मन का अभिमान रहेगा, तब तक आप सब बना दोगे, लेकिन ये संभव नहीं होगा। लोग पूछते हैं सुपरमेंटल वर्ल्ड कहाँ है, श्री अरविंद ने, माताजी ने तो उतार दिया है। हाँ उतार दिया है, फिर है कहाँ, आप अधिकारी बनिए, आप देखिए आपके सामने प्रकट होगा। तो लोग कहते हैं ये क्या बात हुई, मतलब मुझे थाली में ना केवल खाना परोसा जाए, मुँह में खिलाया जाए, ये तो इन्फेंसी में माँ करती है बच्चे को। तो यहां पर वो सारी चीजें, द वीपिंग ऑफ लव, द क्वारल ऑफ द गॉड्स, सीज्ड इन ए ट्रूथ दैट लिव्स इन इट्स ओन लाइट, सब कुछ सामने स्पष्ट प्रकट हो जाता है, सारे विरोध द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं उस एकमेव सत्य की ज्वाला में, उसके प्रकाश में। जब कामनाएं नष्ट होती हैं तब प्रेम का शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है, दैट इज द स्टोरी जिससे हम लोगों ने प्रारंभ किया था। तब शिव और पार्वती का विवाह होता है, शिवत्व यानी द डिवाइन सोल और पार्वती मेटीरियल नेचर, इन दोनों की यूनियन की एक कंडीशन है कि काम हैज टू वैनिश, और जब वो नष्ट होता है, देवताओं का भी उसके पीछे सारा सब का वो अटेम्प्ट एफर्ट फिनिशेस, और जब काम नष्ट होता है तब शिव पार्वती का प्रेम यानी मैटर और स्पिरिट फ्यूज एंड बिकम वन। लेकिन काम का रोल क्या था, प्लविंग द सॉइल जरूरी था, वो खेत में हल चलाने के लिए जरूरी था, लेबर के लिए। लेकिन बाद में देवता आते हैं, और यही श्री अरविंद स्टोरी में बताते हैं कि लोग अक्सर कहते हैं कि सागर मंथन में देवताओं के साथ पार्शल थे श्री हरि, और उन्होंने असुरों को क्यों नहीं दिया अमृत। तो कहानी का विस्तार तो हम लोग कई बार कर चुके हैं, लेकिन मूल चीज ये है, असुर तब तक अधिकारी नहीं बनता। अब यहाँ असुर वो सींग वाला और देवता वो बैठे हुए टेलीविजन के स्वर की बात नहीं हो रही है, जिनके अंदर देवत्व है। असुर तब तक अधिकारी नहीं होता हालांकि लेबर करता है, वो बहुत लेबर करता है, वही जमीन को प्लफ करता है, लेकिन तब तक अधिकारी नहीं होता जब तक कि वो अपने अहंकार का त्याग कर भगवान को समर्पण नहीं कर देता, तब तक वो अधिकारी नहीं होता है। दिस इज द लॉ ऑफ इवोल्यूशन। आप माइंड से एक सीमा तक पहुंचेंगे, फिर आप समर्पण करेंगे, जब आप समर्पण करेंगे तो बाकी जो होगा आत्म साक्षात्कार, आत्म तादात्म्य, नई दृष्टि, उसके साथ नई सृष्टि पहले दिखाई देगी कि सत्य क्या है, तब हम लोग उसको चेंज करने की बात कर सकते हैं। अभी तो हम लोग सत्य को देखते नहीं, एक्टिविस्ट की तरह ये बदलो वो बदलो, इट डजंट हेल्प। फर्स्ट वी मस्ट रियलाइज द डिवाइन एंड रीच दिस स्टेट, जिसका लास्ट में एक लाइन में वर्णन है, हिज सोल स्टूड फ्री ए विटनेस एंड ए किंग। अब ये साक्षी वो वाला साक्षी नहीं है जो हम लोग पढ़ते हैं, ये विपस्ना मेडिटेशन वाला साक्षी नहीं है। विपस्ना मेडिटेशन वाला साक्षी आप अपनी प्रकृति को देख रहे हो, मन का एक भाग अलग हो गया है और देख रहा है, अज्ञान की दृष्टि, आप समझ नहीं रही हो, केवल एक देख रहे हो कि मशीन घूम रही है और उससे आप अलग हो गए। ये वह साक्षी है जिसके प्रकाश में सब कुछ जाना जाता है। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु नालिप्यते चाक्षुषे बाह्य दोषा, वो हर चीजों का आंतरिक सत्य जान लेता है लेकिन उससे दोष से मुक्त रहता है। नमस्ते।